हाँ बिल्कुल। और देखिए, पूज्य गुरुदेव का जो जोर है वो इसी बात पर है कि अध्यात्म कोई बच्चों का खेल नहीं है, सतही चीज नहीं है। उन्होंने उदाहरण भी दिया है, जैसे खेती में सिर्फ बीज बो देना काफी नहीं होता ना, उसे खाद भी चाहिए, पानी भी चाहिए। ठीक वैसे ही जो भक्ति का बीज है, श्रद्धा का बीज है, उसे फलने फूलने के लिए योग और तप ये खाद पानी का काम करते हैं। ये बात बहुत जरूरी है। गुरुदेव पूजा उपासना के महत्व को कम नहीं आंकते। उन्होंने तो खुद हमें बताया वर्षों कठोर साधना की है, लेकिन वो एक चेतावनी भी देते हैं कि इसे बस दिल लगी समझकर या बिना भाव के, बिना समझे करने से तो बेहतर है कि नहीं किया जाए।
सही का, वो इसी बात को और साफ करते हुए कहते हैं कि भाई केवल माला घुमा लेना या मंदिर में जाकर थोड़े चावल चढ़ा देना, ये सब तो शुरुआती बातें हैं। जैसे बच्चे नहीं होते गुड्डे गुड़ियों से खेलकर खुश हो जाते हैं, ये कुछ वैसा ही है।
अच्छा,
असली आध्यात्मिक फायदे के लिए गहराई में उतरना ही होगा। और देखिए कितनी बड़ी बात कही उन्होंने, वे उस व्यक्ति को एक तरह से नास्तिक कहते हैं जो बहुत कम कीमत पर, मतलब बिना मेहनत बिना त्याग के, बस थोड़े भजन करके सब कुछ पा लेना चाहता है।
हाँ।
बजाय उसके जो ये समझता है कि नहीं, प्रयास करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा।
ये तो बड़ी बात है। अच्छा, यहाँ पर एक और दिलचस्प मोड़ आता है। गुरुदेव योग की जो आम धारणा है उसे भी थोड़ा बदलते हैं। अक्सर हम लोग योग मतलब क्या समझते हैं, नीति धोती, आसन, प्राणायाम, बस यही सब शारीरिक क्रिया है।
हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरुदेव के अनुसार योग सिर्फ शारीरिक कसरत नहीं है, ये उससे बहुत बहुत गहरा है। उनके लिए योग का असली मतलब है आत्मा का परमात्मा से जुड़ना, एकाकार हो जाना।
जुड़ना,
हाँ, ये शारीरिक से ज्यादा एक भावनात्मक और कह सकते एक वैचारिक प्रक्रिया है। गुरुदेव कहते हैं कि इंसान और भगवान के बीच में जो दीवार है ना, वो है अहम की, मैं और मेरा का जो भाव है,
अहंकार।
अहंकार, बिल्कुल। योग इसी दीवार को गिराने का विज्ञान है। जैसे पानी की एक बूंद है, वो जब समुद्र में मिलती है तो अपना अलग अस्तित्व खो देती है, वो समुद्र ही बन जाती है। या कोई छोटा नाला जब गंगा जी में मिलता है तो वो गंगा जल बन जाता है। वैसे ही योग में साधक अपने छोटे मैं को, अपने अहम को उस विराट सत्ता में विलीन कर देता है।
गुरुदेव ने अपना उदाहरण भी दिया इस बारे में कि कैसे उन्होंने अपना सब कुछ, तन मन धन, अपने गुरु का समर्पित कर दिया और बदले में उन्हें वो ईश्वरीय सहायता, वो मार्गदर्शन मिला।
हाँ,
ये है वो समर्पण वाला योग, सच्चा योग।
बिल्कुल, यही सच्चा योग है। और इसी समर्पण के भाव से ही फिर दूसरे सोपान का दरवाजा खुलता है, वो है तप।
तो योग के बाद अब बात आती है तप की, दूसरा महत्वपूर्ण सोपान। अब तप का नाम सुनते ही अक्सर क्या ख्याल आता है, भूखे रहना, धूप में खड़े होना, कांटों पर चलना।
हाँ हाँ, आम धारणा तो यही है, लेकिन पूज्य गुरुदेव तप को इससे कहीं ज्यादा व्यापक अर्थ देते हैं। उनके लिए तप का मतलब सिर्फ शरीर को कष्ट देना नहीं है, तप का गहरा अर्थ है किसी ऊंचे आदर्श के लिए, किसी पवित्र लक्ष्य के लिए स्वेच्छा से, मतलब अपनी मर्जी से और खुशी खुशी कष्ट सहने का अभ्यास करना।
खुशी खुशी, ये महत्वपूर्ण है।
बहुत महत्वपूर्ण। जैसे कच्ची ईंट होती है ना, वो जब तक आग में तपती नहीं तब तक पक्की और मजबूत नहीं बनती।
सही बात है।
या फिर साधारण लोहा है, वो भट्टी में तपकर ही तो फौलाद बनता है। या बल्ब का फिलामेंट, वो तपता है तभी तो रोशनी देता है। वैसे ही तप जो है वो व्यक्ति को अंदर से मजबूत बनाता है, उसके संकल्प को, उसकी इच्छा शक्ति को दृढ़ करता है।
गुरुदेव ने उदाहरण भी दिए हैं कि तप के बल पर ही तो पार्वती जी ने शिव जी को प्राप्त किया, भगीरथ कठोर तपस्या करके गंगा को पृथ्वी पर लाए।
हाँ, और दधीची ऋषि की हड्डियां भी तो तप के कारण ही इतनी पवित्र और शक्तिशाली हुई कि उनसे वज्र बना। तपस्या हमें वो शक्ति देती है जो साधारण परिस्थितियों में संभव नहीं।
तो तप का उद्देश्य क्या है, सिर्फ शक्ति पाना?
नहीं, उद्देश्य और गहरा है। तप की शुरुआत होती है इंद्रिय संयम से, मतलब अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को व्यर्थ के कामों में, भोग विलास में नष्ट न होने देना। जैसे अगर किसी बर्तन में छेद हो तो उसमें पानी नहीं टिक सकता ना?
नहीं।
वैसे ही अगर जीवन असंयमित है तो शक्ति बिखर जाती है। तप का असली उद्देश्य है स्वयं को तपा के, अपने अंदर के विकारों को, बुराइयों को जलाकर आत्मा को इतना शुद्ध और पवित्र बनाना कि वो योग के लिए, यानी परमात्मा से जुड़ने के लायक बन सके। तप हमें देवता बनाता है, और देवता कौन होता है जो केवल मांगता नहीं बल्कि देता है, त्याग करता है।
अच्छा,
गुरुदेव ने वो हजारी किसान का उदाहरण दिया जिसने अपनी मेहनत से, तप से एक वीरान जमीन को हजारीबाग जैसा सुंदर शहर बना दिया, या वो पिसनहारी नारी जिसने चक्की पीस पीस कर जो थोड़े पैसे बचाए उनसे गांव के लिए मीठे पानी का कुआं खुदवा दिया। ये है सच्चा तप, त्याग और परोपकार।
तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें तो सार ये निकलता है कि सच्ची आध्यात्मिक उन्नति के लिए सिर्फ भारी क्रियाएं, पूजा पाठ वगैरह, वो काफी नहीं है।
बिल्कुल नहीं, वो जरूरी हो सकती हैं शुरुआत में, लेकिन वो पूरी यात्रा नहीं है। योग यानी अपने अहंकार को समर्पित करके ईश्वर से एकाकार होना, जुड़ना, और तप यानी स्वेच्छा से कष्ट सहकर, अनुशासन में रहकर, त्याग करके, देकर स्वयं को मजबूत और योग्य बनाना। ये दोनों मिलकर ही आध्यात्मिक जीवन को सही मायने में सार्थक बनाते हैं। ये वो खाद और पानी है जिनकी हमने शुरू में बात की थी, जिनसे भक्ति का छोटा सा बीज एक महान वट वृक्ष बन सकता है।
तो आज हमने पूज्य गुरुदेव के इस गहरे चिंतन से ये समझा कि आध्यात्मिक शिखर पर चढ़ना है तो योग यानी समर्पण और तप यानी स्वैच्छिक अनुशासन और त्याग, ये दोनों अनिवार्य सीढ़ियां हैं। ये कोई सस्ता सौदा नहीं है। इसमें गहरी निष्ठा, लगन और निरंतर प्रयास की जरूरत है।
और यहीं पर शायद एक विचारणीय प्रश्न हम छोड़ सकते हैं अपने लिए। अगर योग आत्मा और परमात्मा की वेल्डिंग है, उनका जुड़ना है, और तप उस वेल्डिंग के लिए जरूरी गर्मी या ऊर्जा पैदा करता है, तो हमारे अपने जीवन में वो कौन सा अहम का कोना है, या वो कौन सी आराम की आदत है जिसे हम छोड़ने को तैयार नहीं, जो शायद इस अहम जुड़ाव में, इस वेल्डिंग में कहीं ना कहीं रुकावट बन रहा है। इस पे सोचना जरूरी है।